नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 5 देशों की यात्रा के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंच गए हैं। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। स्वीडन की 2 दिन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी आज स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता आपसी संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे, साथ ही व्यापार, पर्यावरण अनुकूल विकास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती प्रौद्योगिकी, स्टार्टअप, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु संरक्षण के प्रयास और आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों के सहयोग के नए अवसरों पर भी चर्चा होगी। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लैन के साथ यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को भी संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे। नीदरलैंड्स की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रोब येटेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने रक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति तथा व्यापार नेटवर्क पर पड़ रहे प्रभाव को लेकर गहरी चिंता भी व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी नीदरलैंड्स यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत और नीदरलैंड्स की मित्रता आने वाले समय में और मजबूत होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री रोब येटेन के साथ प्रसिद्ध अफ्सलाउड डाइक बांध का भी दौरा किया। यह यात्रा गुजरात की महत्वाकांक्षी कल्पसर परियोजना के लिए भारत नीदरलैंड्स तकनीकी सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इस परियोजना के तहत खंभात की खाड़ी पर 30 किलोमीटर लंबा बांध बनाकर विशाल मीठे पानी का जलाशय तैयार किया जाएगा। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार कल तिरुवनंतपुरम में शपथ लेगी। कांग्रेस ने इस महीने की 14 तारीख को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान NID में नवाचार और इंक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि यह एक ऐसा संस्थान है जो रचनात्मकता को उद्यमिता से जोड़ता है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है। श्री जोशी ने बताया कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है।
आज हमने एक ही दिन में 256.4 गीगावाट की अत्यधिक मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है। ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि सिस्टम में लगातार सुधार हो रहा है। 256 गीगावाट में से जिसे हमने एक ही दिन में एक खास समय पर अत्यधिक मांग के तौर पर पूरा किया, उसका 33% हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा से आया है।
33% इज फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वर्चुअल माध्यम से बेंगलुरु और मुंबई के बीच नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि दक्षिण और उत्तर कर्नाटक के लोगों की काफी लंबे समय से लंबित मांगे पूरी हो रही हैं। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु और मुंबई के बीच वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस महीने की 25 तारीख को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृह मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले नागरिक अलंकरण समारोह में राष्ट्रपति पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार प्रदान करेंगी। भारत ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। और खेलों में IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 223 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में पंजाब ने ताजा समाचार मिलने तक 18वें ओवर में 6 विकेट पर 172 रन बना लिए हैं। दिन के दूसरे मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।